लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, किसी ने मजाकिये लिहाज में यह कहा है कि विवाह के पहले लड़के लड़की को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल और विवाह के बाद उन्हें एक साथ मिलाना मुश्किल। दिल्लगी में कहे गए ये शब्द आज के मानव समाज में बहुत हद तक खरे जान पड़ते हैं। आज की वर्तमान परिस्थिति में विवाह का टूटना एक आम बात हो गई है। जहां एक समय चट मंगनी पट बिहा कही जाती थी, वहीं आज कुछ खटपट और फट अलगाव दूसरा भाग बन गई है। आज हर परिवार और हर मोहल्ले में हमें यही सुनने और देखने को मिलते हैं कि शादी के कुछ ही दिन बाद वर और वधु के बीच में एक अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई और वे अलग अलग रहने लगे हैं। एक पूरब की ओर चलता तो दूसरा पश्चिम की ओर। हमारे परिवार में ऐसा होना आज विभिन्न रूपों में, परिवार में बिखराव और परिवार के प्रियजनों के मध्य आपसी तकरार का कारण बना हुआ है। परिणाम स्वरूप समाज तथा परिवारों की शांति और खुशहाली गुम होती जान पड़ती है। श्रोताओं, आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने परिवारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम एक दूसरे और उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, जो प्रेम के स्रोत हैं, हमारे परिवारों को अपनी सुरक्षा और निगरानी में बनाए रखें, जिससे हमारे परिवारों से प्रेम रूपी झरने का प्रवाह निरंतर बना रहे, हम अपनों से संयुक्त रह सकें और जिस प्रेम को हमने सर्वप्रथम अपने परिवार में अनुभव किया है, उस प्रेम को दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से बांट सकें।
फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्यागपत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे परिवारों को प्रेम के सूत्र में पिरोए रखे, जिससे ईश्वरीय प्रेम की मूलभूत अनुभूति जिसे हमने अपने परिवारों में पाई है उसका साक्ष्य हम अपने जीवन के द्वारा भले कार्यों में दूसरों के लिए दे सकें। श्रोताओं, उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ मानव के लिए ईश्वर की चिंता को व्यक्त करता है जिसकी सृष्टि उन्होंने अपने हाथों से की। मनुष्य को अकेले रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहयोगी बनाऊंगा। ये वाक्य हमारे लिए ईश्वर के दिव्य और गूढ़ रहस्यात्मक सोच को व्यक्त करते हैं जो हर मानव की बौद्धिक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आंतरिक सच्चाई से जुड़ी हुई है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो अपने को इस पृथ्वी पर अकेला बिना किसी मित्र या सहयोगी के रखने की सोचता हो। महान दार्शनिक अरिस्टोटल इसके बारे में कहते हैं, वह जो अपने में अकेला रहता वह अपने में या तो दिव्य है या दानव। ईश्वर ने सृष्टि के शुरू में ही अपनी बनाई हुई कृति आदम को देखा और उसके लिए एक सहयोगिनी की रचना की जो स्वयं उसके शरीर से निकाली गई। जिस भांति हम अपने से संयुक्त और जुड़ी हुई चीजों को सहज ही जान और पहचान लेते और कहते हैं यह तो मेरी है, वैसे ही आदम ने अपने शरीर से बनाई गई नारी को एक ही नजर में पहचान लिया और कहा यह तो मेरे हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इस भांति उसने स्वयं उसे नारी का नाम दिया क्योंकि वह नर से निकालकर उसके लिए ही बनाई गई थी। श्रोताओं, मानवीय सृष्टि का यह वृतांत हमें एक और बहुमूल्य बात पर गौर करने को निमंत्रण देता है कि ईश्वर ने यूं ही कोई भी वस्तु से मानव के लिए सहयोगी का निर्माण नहीं किया अपितु वे अपने सर्वश्रेष्ठ अपने अनुरूप बनाए गए मानव से एक सुंदर उपयुक्त और योग्य प्राणी का निर्माण करते और उसे मानव के लिए देते हैं। यह हमारे लिए इस सत्य को घोषित करता है कि ईश्वर हमें कोई आलतू फालतू चीजों को नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ चीजों को सदैव हमारी जरूरत के अनुरूप देते हैं। श्रोताओं, ईश्वर के इस देने में हमारे लिए रहस्य यही है कि हम उनके द्वारा मिली वस्तु में आनंदित हों और ईश्वरीय दिव्य खुशी का एहसास करें। यह खुशी हमारे लिए ईश्वर से मिलने वाले उपहारों को कृतज्ञता के भाव से ग्रहण करने में आती है, जैसे कि आदम ने इस दिव्य खुशी का एहसास किया। इस भांति हमारे लिए परिवार, माता पिता, भाई बहने, संगी साथी के संबंध में हमने अपनी ओर से कोई चुनाव नहीं किया है बल्कि ये सारी चीजें हमें दान स्वरूप ईश्वर की ओर से मिली हैं और इन सारी चीजों को देने वाले ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञता के भाव व्यक्त करने का आह्वान किया जाता है जो हमारे प्रति सदैव उदार बने रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने विवाह के संबंध में दंपतियों के बीच प्रेम के परस्पर अटूट संबंध के बारे में सुना। ईश्वर ने इस प्रेम और विवाह की स्थापना सृष्टि के शुरू में ही की जहां उन्होंने नर और नारी को एक दूसरे का स्थान देने, एक दूसरे की मदद करने और अपनी सृष्टि को आगे बढ़ने की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी। यह हमारे लिए विवाह की पवित्रता और उससे एक ईश्वरीय विधान स्वरूप व्यक्त करता है जिसे हम मानव किसी भी रूप में तोड़ने और भंग नहीं करने को कहे जाते हैं। फिर भी आज बहुत से प्रेम विवाह जो हमेशा के लिए इसलिए टूट जाते हैं कि हम अपने को स्वार्थ, संदेह और अहम की भावना से ग्रसित पाते हैं। स्वार्थ में हम उन सारी चीजों को पाने और हासिल करने की चाह रखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। यहाँ हम दूसरों की भावना या इच्छाओं की कद्र करना भूल जाते हैं। शक या संदेह वैवाहिक जीवन में दंपतियों के लिए एक छिद्र की भांति होता जिसका सही समय रहने पर उपचार ना करना जीवन की नाव को ले डूबती है। तो वहीं हमारा अहम हममें इतना प्रबल हो जाता है कि हम किसी की सुनने और झुकने को तैयार नहीं रहते हैं। अपने अहम के कारण हम अपने को सारी चीजों में उचित और सही साबित करने को कोशिश करते हैं जो हमारे प्रेम के संबंध को कमजोर कर देता और हमें अलगाव के पड़ाव तक ले चलता है। श्रोताओं, आइए हम ईश्वर से नम्रता के गुण हेतु प्रार्थना करें, जिससे हम अपने परिवार के सदस्यों को नम्रता के भाव से सहज ही स्वीकार कर सकें, जो हमारे परिवारों को टूटने से बचाए रखेगा।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है। सिखाता आपस में बुराई न कर न तू जीवन में,
न सिखाता आपस में बुराई न कर न तू जीवन में,
अपनी बड़ाई जो करता नहीं में उसका नाम है।
अपनी बड़ाई जो करता नहीं दुनिया में उसका नाम।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। धर्माध्यक्ष धर्म सभा एक यात्रा है जिसमें प्रभु हमारे हाथों में एक महान प्रजा के इतिहास, सपनों और आशाओं को रखते हैं, जो एक ही विश्वास में हमारे भाइयों और बहनों से बने हैं। आइए हम उनके साथ और उनके लिए यह समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ संत पापा फ्रांसिस ने धर्माध्यक्ष धर्म सभा के प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने ये बात अपने एक संदेश के माध्यम से कही। धर्माध्यक्ष धर्म सभा के महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेज ने 2 अक्टूबर को महासभा के दूसरे सत्र की पहली आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में पौत्र आत्मा को सुनने और आत्मपरक करने की पुनः याद दिलाई। उन्होंने कहा, महासभा के दूसरे सत्र के लिए बुलाए गए हम सभी पौत्र आत्मा का आह्वान करें कि वे हमें आलोकित कर दें और हमारे कानों को उनकी आवाज सुनने के लिए चौकस बना दें। पौत्र आत्मा जो पीड़ित सृष्टि तथा अन्याय पर अन्याय सहने वाले प्राणियों की पीड़ा से कराते और दुख सहते हैं, एक नए युग का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा, जब हम इस महासभा में भाग ले रहे हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध लड़े जा रहे हैं, हम संघर्ष के विस्तार के कागार पर हैं। युद्धरत लोगों को एक बार फिर एक साथ बैठने और एक दूसरे से बात करने तथा एक साथ शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करने से पहले कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्डिनल ने कहा, हम कमरे में उपस्थित उन बहनों और भाइयों का आलिंगन करते हैं जो युद्ध क्षेत्रों से या ऐसे देशों से आते हैं जहां लोगों की मौलिक स्वतंत्रता का हनन होता है। उनकी आवाजों के जरिए हम उन लोगों की चीखें और आंसू सुन सकते हैं जो बमों के नीचे पीड़ित हैं, खास तौर पर बच्चे जो नफरत के इस माहौल में सांस लेते हैं। विश्वासों के तौर पर हमें सभी लोगों के लिए शांति के अनमोल उपहार की इच्छा और प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है। हमें निरंतर प्रार्थना को हमेशा विश्वसनीय गवाह के साथ जोड़ना चाहिए। यह सभा अपने आप में एक विश्वसनीय गवाह है। वास्तव में पुरुष और महिलाएं एक दूसरे की बात सुनकर आत्मा को सुनने के लिए पृथ्वी के सभी हिस्सों से आए हैं, जो दुनिया के लिए विरोधाभास का संकेत है। मुझे धर्माध्यक्षों की धर्म सभा की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर संत पापा के भाषण के अंतिम अंश की याद आती है। एक धर्म सभा स्वरूप कलीसिया राष्ट्रों के बीच उठाए गए एक ध्वज की तरह है, एक ऐसी दुनिया में जो सार्वजनिक प्रशासन में भागीदारी, एकजुटता और पारदर्शिता का आह्वान करते हुए अक्सर सभी लोगों के भाग्य को छोटे लेकिन शक्तिशाली समूहों की मुट्ठी में सौंप देती है। धर्म सभा वास्तव में आत्मपरक का एक स्कूल है। यह कलीसिया पेत्रुस के साथ मिलकर आत्मपरक करने के लिए एकत्रित हुई है। एक धर्म सभा स्वरूप कलीसिया आज के समाज के लिए एक प्रस्ताव है। आत्मपरक एक शैली और विधि के रूप में धर्म सभा स्वरूप कलीसिया के परिपक्व अभ्यास का फल है। कलीसिया का आत्मपरक किसी भी सभा के लिए एक चुनौती और एक उदाहरण है, जिसके सदस्यों को एक दूसरे की बात सुनने में सत्य और आम हित की खोज करनी चाहिए। कार्डिनल ग्रज ने कहा, यह ना भूलें कि आत्मपरक एक पुल है जिसके माध्यम से विश्वासी और गैर विश्वासी एक सामान्य व्याकरण का उपयोग करके एक दूसरे को सुन और समझ सकते हैं। हमारी इस धर्म सभा का क्षेत्रीय कलीसिया है, लेकिन इच्छा यह है कि संबंधों, प्रक्रियाओं, स्थानों पर हमारे काम का परिणाम सभी लोगों के लिए मददगार हो और एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण को योगदान दे सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि धर्म सभा का उद्देश्य कलीसिया में संरचनात्मक परिवर्तन और सुधार लाना है। हम सभी इसकी इच्छा रखते हैं, फिर भी हम सभी के पास सुधार और इसकी प्राथमिकताओं के बारे में एक ही विचार नहीं है। 1950 के शुरुआत में यावेस कोंगर ने कलीसिया में सच्चे और झूठे सुधार की बात की थी। इसके सच होने के लिए हमारी प्राथमिकताएं भी सच्ची होनी चाहिए, यानी उन्हें सत्य की आत्मा के अधीन होना चाहिए जो कलीसिया का सत्य पर मार्गदर्शन करता है। यदि हमारे कार्य में पवित्र आत्मा की प्रधानता नहीं होती तो धर्म सभा का उद्देश्य प्रशासनिक, न्यायिक या राजनीतिक हो सकता है, न कि कलीसिया संबंधी। ये पवित्र आत्मा ही हैं जो कलीसिया को सत्य को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। महासभा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर, जिन्होंने प्राचीन में बात की, अपने प्रिय पुत्र की दुल्हन के साथ निरंतर बातचीत करते हैं, और पवित्र आत्मा, जिनके द्वारा सुसमाचार की जीवित आवाज कलीसिया में गूंजती है और उसके द्वारा कलीसिया में उन सभी लोगों को सत्य की ओर ले जाती है जो विश्वास करते हैं और मसीह के वचन को जीते हैं। कलीसिया का संविधान दे वेरबुम यह समझने के लिए कि यह कैसे हो सकता है याद दिलाता है कि वास्तविकताओं और हस्तांतरित शब्दों की समझ में वृद्धि हुई है। यह विश्वासियों द्वारा किए गए चिंतन और अध्ययन के माध्यम से होता है जो इन चीजों को अपने दिलों में संजोते हैं। कार्डिनल ग्रज ने अंत में कहा, गहन कार्य हमारा इंतजार कर रहा है। इस चरण के बाद 2021 से 2024 की धर्मसभा प्रक्रिया में जो परिपक्वता आई है उसका स्वागत और कार्यान्वयन होगा। कलीसिया जितना भी परिणाम प्राप्त करेगी यह हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं होगा, बल्कि पवित्र आत्मा को विनम्रता पूर्वक सुनने का फल होगा। जब हम मिशन माह 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, विश्वव्यापी कात्तिक कलीसिया सुसमाचार के प्रसार के मिशन के प्रति अपनी समझ और प्रतिबद्धता को गहरा करने के लिए एक साथ आ रही है। 2019 से कलीसिया ने मिशन माह के लिए कई ऑनलाइन कार्यक्रम और गतिविधियां शुरू की हैं, जिनमें पोप फ्रांसिस ने मसीह के मिशन में भाग लेने के लिए आगे बढ़ने और सभी को आमंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया है। उनका संदेश वैश्विक मिशन गतिविधियों को प्रेरित करता और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष मिशन माह का आधिकारिक उद्घाटन बैंगलोर के महाधर्म अध्यक्ष पीटर मचाडो ने किया, जिन्होंने एक प्रेरक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने आज की दुनिया में मिशनरी कार्य के महत्व पर जोर दिया और विश्वासियों को आशा एवं प्रेम के संदेश को फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत और संचालन महाधर्म प्रांतीय संचार केंद्र और AVISTTO के निदेशक डॉक्टर फादर सिरिल विक्टर जोसेफ ने सफलतापूर्वक किया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।